शराब जिसको कहा गया कि ये उम्मुल खबाइस है, खबासतों की माँ, सारी खबासतें इससे फूटती हैं आगे, ये इतनी बुरी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है कि शराब पीने वाला ऐसा है जैसे बुतों को पूजने वाला, जैसे लात और उज्जा की परस्तिश करने वाला, ऐसा है शराब पीने वाला। इतनी इसकी कबाहत है कि शराब पीना तो छोड़ें, पीने की तो बाद की बात है, इवन यहां तक के जो इसको इसको बनाने वाला है, जो बनवाने वाला है, जो पिलाने वाला है, जो उठा के ट्रांसपोर्ट करने वाला है और जो उठवाने वाला है, मतलब एक ट्रक वाले को हायर किया, तुम ये शराब लेके यहां से यहां चले जाओ। अब ये उठा तो नहीं रहा ना पी रहा है, लेकिन उठवाने वाला भी, उठाने वाला भी, बेचने वाला, खरीदने वाला, कीमत लेने वाला, सब पे अल्लाह की फिटकार है। हदीस में आई है, जो फिटकार में आ जाए तो उनका क्या हाल होगा? तो फिर रहमत कहाँ गई? रहमत मांगे और उसके बाद काम अगर ये करें तो ऐसे स्टॉक्स में या ऐसी जगहों पे काम करना जहां पे शराब बेची जाए और उसको बेचना या खरीदना या उसको तोहफे में देना, ये सब ही हराम है। आप देखें कि जिस वक्त शराब की हुरमत हुई तो ये चीज ना इन लोगों के अंदर इस कदर कॉमन थी अरबों के अंदर कि ये तो उनके लिए, मतलब जैसे आज आप देखें एक वेस्ट में कि ड्रिंक है जो कि इनकी कोई पार्टी कोई चीज इसके बगैर पूरी नहीं होती, शराब के बगैर कोई खुशी इनकी पूरी नहीं होती, इसी तरह अरबों में था। लेकिन जिस वक्त ये हराम हुई तो उस वक्त की आप उस वक्त के वाकयात उठा के कर देखें। एक हदीस में आता है मुस्नद अहमद में है कि हजरत किसान रजी अल्लाह तआला अन्हु शराब के ताजिर थे, जिस साल शराब हराम हुई उसी साल ये शाम के मुल्क से बहुत सारी शराब तिजारत के लिए लेकर आए थे। आप सोचें इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने फरमाया आप तो हराम हो गई, पूछा अब मैं इसको बेच दूं? आपने फरमाया ये भी हराम है और उसकी कीमत भी हराम है, तो उन्होंने सारी शराब बहा दी। और हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हजरत अबू उबैदा बिन जराह, हजरत उबई बिन काब, हजरत साद और सहाबा कराम की एक बड़ी जमात को शराब पिला रहा था। दौर चल रहा था, सब लज़्ज़त अंदोज हो रहे थे, करीब था कि नशे का पारा बढ़ जाए। इतने में किसी सहाबी ने आके खबर दी, क्या तुम्हें पता है शराब तो हराम हो गई है? उन्होंने कहा बस करो अनस, जो बाकी बची है उसको बहा दो, अल्लाह की कसम इसके बाद एक कतरा भी उनमें से किसी के हलक में नहीं गया। इताअत का, आप फरमा बरदारी का आप एक बेहतरीन नमूना अगर देखना चाहते हैं तो ये कि इंसान का तो सारी जिंदगी के लिए आप हराम हो जाने, हाय जल्दी से पी लो, आज तो जितनी पी लो बस पी लो, अब तो कभी मिलनी नहीं है। ये चीज का पता होना कि कल से नहीं करना, आज कर लो बस, कल तौबा कर लेंगे बस, उसके बाद बस खत्म। और अब तो हराम हो ही गई है, अभी पी लो जितनी पीनी है। ये नहीं उन्होंने कहा, वो भी कौन सा कोई देख रहा है? आप सल्लम तो वहां पे नहीं थे, तो अभी तो पी लें, बाद की बातें हैं, जब हराम है तो बाद जब जाएंगे सुनेंगे आया तो फिर कर भी लेंगे। नहीं, अल्लाह हू अकबर, कौन इसकी वजह से अपने ऊपर लानत ले सकता है? आप सोचें ये जो मैंने आपको बात बताई फिटकार की, ये दस दस अफराद हैं जिनको ऊपर फिटकार है, जिनके ऊपर लानत है। तो पीने वाला तो उसके बराबर ही है, पिलाने वाला उसके बराबर ही, बेचने वाला और खरीदने वाला और नचोड़ने वाला और उसको बनाने वाला और उसको उठाने वाला और जिस पे जिसके पास उठा के लाई जाए और उसकी कीमत खाने वाला, ये सारे जो दस है ना ये सब बराबर हैं लानत में। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए। आज मुसलमानों के अंदर पूछते हैं शराब कहाँ लिखा हुआ कि हराम है, हराम तो जो लिखा हुआ है रिच्स मिन अमल शैतान, रिच्स है गंदगी है शैतान के अमाल में से, शैतान के अमाल हलाल होते हैं? हाँ, शैतान के जो अमल हैं वो हराम होते हैं या हलाल होते हैं? अल्लाह अकबर। इसी तरह मुस्लिम वगैरह में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दोस्त कबीला था, कबीला सकीफ, उसमें से या कबीला दौस में से फतह मक्का वाले दिन वो आपसे मिला और एक मश्क तो जो थी पूरा लेदर बैग शराब का वो आपको तोहफतन देने लगा। आपने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने इसे हराम कर दिया? अब उस शख्स ने अपने गुलाम से कहा जा उसके बेच दे। आपने फरमाया क्या कहा? उसने जवाब दिया बेचने को कह रहा हूँ। आपने फरमाया जिस अल्लाह ने इसका पीना हराम कर दिया ना उसने उसका बेचना भी हराम किया। और कितने आराम से मुसलमान बेच रहे होते हैं, कहते हैं नहीं तो हम पीते तो नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह बहकी की हदीस में कि एक आदमी शराब बेचते थे और बहुत खैरात भी किया करते थे, तो हजरत इब्ने अब्बास से शराब फरोशी का मसला पूछा गया, तो आपने फरमाया ये हराम है और उसकी कीमत भी हराम है। ए उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारी किताब के बाद कोई किताब उतरने वाली होती और अगर तुम्हारे नबी के बाद कोई नबी और आने वाला होता, जिस तरह अगलों की रुसवाइयां और बुराइयां तुम्हारी किताब में उतरी हैं, तुम्हारी खराबियां उन पर नाजिल होती, लेकिन तुम्हारे जो काम है इनका मामला कयामत के दिन तक डिले कर दिया गया, मौखर कर दिया गया, और ये बहुत भारी और बड़ा है। यानी अब जो लोग आज ये काम करते हैं, इसको बेच रहे हैं, फिर उसको बोल कहते हैं हम तो इतना खैरात भी तो करते हैं, इतना डोनेशन भी देते हैं, तो कितनी उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे जो ये गलत कारियां है ना, जैसे उनकी तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे कुरान के अंदर है ना बनी इसराइल की बातें, इसी तरह तुम्हारी होनी थी उनकी किताबों में, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारा मामला कयामत के लिए उठा के रख दिया। अल्लाह अकबर। तो इसी तरह एक शख्स खैबर से शराब ले लाके मदीने में फरोख्त किया करता था। एक दिन वो ला रहा था, एक सहाबी रास्ते में मिल गए, फरमाया शराब तो हराम हो गई है। वो वापस मुड़ गया, एक टीले पे जाके उसने एक कपड़े से उसको ढांप दिया शराब को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा ये सच है कि शराब हराम हो गई? आपने फरमाया हाँ सच है। कहा फिर मुझे इजाजत दीजिए कि जिससे लिए मैं उसको वापस कर दूं। फरमाया इसका लौटाना भी जायज नहीं, यानी मैं वापस करके अपने पैसे ले लेता हूँ। कहा फिर इजाजत दे मैं उसको किसी को तोहफा दे देता हूँ। ऐसे कोई कहते हैं कि हमें किसी ने गिफ्ट दिया, कोई हॉलीडेज पे कोई, जस्ट जाहिर है आप जब गैर मुस्लिमों अंदर रहते हैं तो कभी किसी ने दे दिया, उसी वक्त कबूल कर लिया, मैं सोचा मैं आगे किसी को दे दूंगी, नहीं। तो उसने कहा कि मैं उसे ऐसे शख्स को तोहफा दे दूं जो उसका मुआवजा मुझे दे। आपने फरमाया ये भी सही नहीं। उसने कहा इसमें यतीमों का माल लगा हुआ है। आपने फरमाया देखो जब बहरीन का माल आएगा उससे हम तुम्हारे यतीमों की मदद कर देंगे, मगर ये नहीं कि तुम यतीमों का चूंकि माल लगा हुआ तो इसलिए शराब का क्या करें, इसे नफा नहीं हासिल कर सकते। तो इसका नुकसान क्या है आखरत के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत की कसम खाई है कि जो इसे हुरमत के बाद पिएगा उसे मैं कयामत के दिन प्यासा रखूंगा, यानी हराम होने के बाद भी जो इसको पी लेगा, और हुरमत के बाद जो इसे छोड़ेगा मैं उसे जन्नत के पाकीजा चश्मे से पिलाऊंगा। अब ये सारी आयतें क्या बता रही है? हराम होने के बाद, हराम होने के बाद, हराम होने के बाद, ये कहते हैं कहां पे हराम? हदीस भरी पड़ी है हराम की अल्फाज से, अगर हराम के अल्फाज ही देख रहे, मगर हदीस को कौन पूछे, उसको मानते ही नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने नशे की वजह से एक वक्त की नमाज छोड़ी वो ऐसा है जैसे किसी ने पूरी जमीन की सल्तनत छीन, पूरे जमीन की सल्तनत छीन गई हो जैसे किसी से, और जिस शख्स ने 4 दफा की नमाज नशे में छोड़ दी अल्लाह ताला उसे तीनतुल खियाल पिलाएगा। पूछा गया वो क्या होता है? फरमाया जहन्नमियों का खून और उनकी पीप और उनका पसीना और उनका पेशाब, पी लो यहाँ पे जितनी पी लो, तो उसके बाद क्या वहां पे ये पीना पड़ेगा, इसके लिए तैयार है कोई? और एक बात और समझने की है अबू दाऊद में है कि हर अकल को ढांपने वाली चीज खमर है, सिर्फ शराब खमर नहीं है, हर नशे वाली चीज खमर है और हर नशे वाली चीज हराम है। अब आज जो मसला है ड्रग्स का वो कितना बड़ा मसला बन चुका है, खास तौर पे यूथ में, स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये चीज इतनी आम हो चुकी है, और इसकी यानी कबाहत ना उन बच्चों को पता होती है, गैर मुस्लिम बच्चों के, मुसलमान बच्चों को नहीं पता कि क्या चीज हम, ये कितना हराम काम है। आप देखें हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर लोग सिरिंजे पकड़े बैठे हैं, अफीम चर्स फलाम पता नहीं क्या क्या, और ये हीरोइन के टीके लग रहे हैं और क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हराम में आती हैं। जो शख्स नशे वाली चीज पिएगा उसकी 40 दिन की नमाज भी कबूल नहीं है, अगर पढ़ भी ले तो। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला माफ फरमाए और उन चीजों से महफूज रखे। और ये भी है कि 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन रहमत की नजर से नहीं देखेगा, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा शराब का आदी, اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کے احسان جتانے والا. ان تین کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اور اس دن اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بچے گا کیسے بتائیں؟ اس دن تو اللہ کی رحمت سے ہی کوئی جنت میں بھی داخل ہوگا. تو جس سے اللہ کی رحمت ہی روٹھ جائے پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ مرفوع حدیث میں بخاری اور مسلم میں کہ زانی زنا کے وقت, چور چوری کے وقت, اور شرابی شراب خوری کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا. یعنی اگر اسی حالت میں مر گیا نا تو ایمان کے بغیر مرے گا. اس وقت جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں کہ جو شخص شراب پیے گا 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پہ رہتی ہے. اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کافر مرے گا, ہاں اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے. اس اتنی احادیث کے بعد بھی کوئی انسان نے پوچھے کہ میں مجھے بتاؤ کہاں حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے, تو پھر میں, یہ میرے سے کسی نے ڈائریکٹ پوچھا تھا اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حرام دیکھیں قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا, نہیں لکھا ہوا. لیکن اس کو کیا کہو گے؟ فاجتنیبو, پس بچو اس سے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اگر یعنی ان سے نہیں بچے تو تم فلاح نہیں پا سکتے یہ ساری چیزوں سے. اور پیچھے کیا آیا؟ انصاف کی بات آئی نا, ازلام کی بات آئی آیت نمبر 3 میں. اور وہ آیت شروع کیسے ہوئی؟ حرمت علیکم, حرام کر دی گئی تمہارے اوپر آیت 3 میں. اب آیت 3 میں ان چیزوں کو حرام کہا گیا اور یہاں پہ ان چیزوں کے ساتھ شراب اور جوئے کو لایا گیا. تو شراب اور جوا حلال ہیں اور باقی یہ دو چیزیں حرام ہیں, ایک ہی ساتھ ایک ہی لائن میں کہہ دی گئی. خود سوچے نا, دو حرام چیزوں کو جب ان دو چیزوں کے ساتھ لایا گیا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہی ہے نا. لفظ کیوں نہیں آیا؟ بس ان کو یہ اعتراض ہے. اور یہ ساری احادیث چھوڑ دی. تو ایک یہ خمر اور دوسرا میسر. جوا اس قدر عام ہو گیا کہ کوئی گیم ایسی نہیں ہوتی, آپ کرکٹ کی اٹھا لیں, آپ اور اٹھا لیں, سب پہ جوئے چل رہے تھے. اور یہ ان ملکوں میں یا ان لوگوں کے اندر جن کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رجس ہے, پلیتی کے اندر اپنے ہاتھ ناپاک کر رہے ہو, اس میں ڈال رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمل شیطان ہے. اور اسی طرح کیسینوز میں جانے میں لوگ کوئی ان کو شرم حیا نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی لت جن کو لگ جاتی ہے, ایڈکشن ہوتی ہے نا, چاہے وہ ڈرگس ہیں, شراب, جوا, یہ لت اس کو ایسے ہی نہیں کہتے, واقعی ایڈکشن. وہ لوگ جو جوئے کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں وہ بھی اس سے نکل نہیں پاتے, وہ پھر کام چور ہو جاتے ہیں, محنت نہیں کرتے. ان کو یہ ہوتا ہے میں جوا کھیلوں گا اتنے پیسے تو بن ہی جائیں گے, اتنے بنا کے لے آؤں گا, اتنے کر لوں گا. ہر جوا کھیلنے والا اس انٹینشن سے نہیں جاتا کہ چلو کوئی بات نہیں میں ہار بھی گیا تو میرے پیسے صدقہ خیرات ہو گئے, نہیں, وہ اس سے جاتے ہیں کہ میں نے آج جیتنا ہی جیتنا. اور پھر اسی چکر میں کچھ دفعہ تو شروع کے اندر جیت جاتے ہیں اور حوصلہ مل جاتا ہے. پھر عمل شیطان ہے نا, شیطان کیسے ہی اپنے اندر کھینچتا ہے. کچھ دفعہ تو جیت جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے, اب میں پتہ نہیں کتنا جیتوں گا, اب پھر اور لگاتا ہے اور لگاتا ہے. پھر ایک دن اپنا گھر بار سب کچھ ہی داؤ پہ لگا دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ایڈکشن کے طور پہ نہیں کر رہے, ہم جسٹ گیم کے طور پہ کھیل رہے ہیں, جسٹ فار فن کھیل رہے ہیں, اور ہم تو بس $2-4 کا کھیل رہے ہیں, اور ہم تو یہ پیسے اگر ہم جیت بھی گئے تو یہ غربا مساکین کے اندر ہم ڈونیٹ کر دیں گے. نہیں, جو چیز حرام ہے اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہے. حرام میں آپ پڑھ کے آپ نے اپنے پر کتنا بڑا گناہ لے لیا. یہ فن نہیں ہے, یہ ایک دن عادت بن جاتی ہے پھر, اور پھر اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. فاجتنیبوہ, بس بچو اس سے, اجتناب کرو اس سے, رک جاؤ اس سے, یعنی مت کرو اس کو. اس سے زیادہ منع کرنے کی اور کیا بات کی جائے؟ کہتے ہیں حرام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت کرو اس سے, تمہاری فلاح ہو جائے گی اگر تم ان چیزوں میں پڑے تو. تم اسے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.